आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज भारत बांग्लादेश सरहद से मुत्तसिल पैतरापोल खुश्की बंदरगाह में मुसाफिरों के लिए नए तैयार करदा टर्मिनल इमारत और माल बर्दारी के गेट मैत्री द्वार का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस साल अगस्त के महीने में ईएसआई स्कीम के तहत 20,74,000 से ज्यादा नए मुलाजमीन का इंदराज किया गया है। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर होंगे। भारत के अभिषेक ने अल्बानिया के तिराना में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। और आज सहपहर अहमदाबाद में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 115वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद मकामी जबानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के पैतरापोल में भारत बांग्लादेश सरहद पर खुश्क बंदरगाह मैत्री द्वार की नौ तामीर शुदा मुसाफिर टर्मिनल इमारत और कार्गो गेट का इफ्तिताह करेंगे। इस टर्मिनल का मकसद भारत और बांग्लादेश के शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाना और बैन अल-अक़वामी तिजारत को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना जिले में वाके पैतरापोल खुश्क बंदरगाह जुनूबी एशिया की सबसे बड़ी खुश्क बंदरगाह है जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और कॉमर्स को बढ़ावा देने में कलीदी रोल अदा करती है। इसी तरह पैतरापोल बेनापोल क्रॉसिंग भी इंतहाई अहम जमीनी सरहदी इलाकों में से एक है जहां से भारत और बांग्लादेश के दरमियान जमीनी सतह से करीब 70% तिजारत होती है। इसके अलावा ये भारत की 8वीं सबसे बड़ी बैन अल-अक़वामी इमिग्रेशन बंदरगाह भी है जो सालाना 20,35,000 से ज्यादा मुसाफिरों की आमदोरफ्त को मुमकिन बनाती है। नए मुसाफिर टर्मिनल से इलाकाई बुनियादी ढांचे को तकवियत मिलेगी और 20,000 मुसाफिर योमिया की सलाहियत के हिसाब से एक ही छत के नीचे इमिग्रेशन, कस्टम्स और सिक्योरिटी खिदमत फराहम की जा सकेंगी। मैत्री द्वार कार्गो गेट वो मुश्तरका कदम है जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों ने इत्तेफाक किया है। जनाब शाह ने गुज़िश्ता साल 9 मई को इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा था। 600 से 700 ट्रक रोजाना की सरहद पर आमदोरफ्त को देखते हुए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत बांग्लादेश सरहद पर नया कार्गो गेट कायम किया। पैतरापोल तकरीब के बाद जनाब शाह दोपहर को हुगली जिले के आरामबाग में इमदाद बाहमी के महकमे की जानिब से मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शाम को मरकजी वजीर दाखिला कोलकाता के सॉल्ट लेक में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में पार्टी तकरीब में शिरकत करेंगे। रात को जनाब शाह नई दिल्ली लौट आएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के खलाई प्रोग्राम को वसीतर बुलंदियों तक पहुंचाने में भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के ताउन की सताइश की। नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 के मौके पर एक वीडियो पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया।
पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी। सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पुरुष है। आइए सरदार पटेल की पावन स्मृति में हम सभी विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें।
सदर जमुरिया ने उजागर किया कि सरदार पटेल आजादी के बाद बहुत सी रजवाड़ा रियासतों के सियासी इत्तेहाद के जरिए जदीद भारत के मेमार हैं। सदर जमुरिया ने यह भी कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बेशबहा विरासत को एक भरपूर खराज अकीदत है। नई जहतों की जस्तजू में भारतीय खलाई सफर से मुतालिक सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 देते हुए इसरो के चेयरमैन डॉ एस सोमनाथ ने कहा कि भारत की काविशें अगले 10 वर्षों में आलमी खलाई मईशत में अपने तआवुन को तौसी देकर 10% करने का अज़्म रखती हैं।
There are 200 plus startups in space sector working. There is a new policy called Space Policy 2023 has been announced. A new foreign direct investment policy has been announced by government. A new geospatial policy came out. All these are adding to creating a more vibrant space economy. Today our aspiration is that India's contribution to global space economy is hardly 2% today. We would like to expand it to something like 10% in the coming 10 plus years. To make it happen, we need participation of many other stakeholders. We want startups, we want big companies to come into space and contribute to create a vibrant space ecosystem.
उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी खलाई मईशत में भारत का तआवुन सिर्फ 2% है और मुल्क इसमें तौसी करना चाहता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये ऐलान कल नई दिल्ली में खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो और बायोटेक्नोलॉजी के महकमे के दरमियान एक मफाहमत नामे पर दस्तखत की तकरीब के दौरान किया। इस मफाहमत नामे का मकसद बायोटेक्नोलॉजी को खलाई टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत करना है जिससे मुल्क में साइंसी इख्तरा के एक नए दौर का आगाज होगा। मफाहमत नामे में एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का कयाम और बायो E3 यानी मईशत माहौलियात और रोजगार के लिए बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी की शुरुआत समेत जैसे कई अहम इकदाम का खाका पेश किया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये बाहमी तआवुन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च स्पेस बायोटेक्नोलॉजी स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो एस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बायोलॉजी जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की में सरकारी और निजी शराकतदारी का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि खलाई स्टार्टअप्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। तकरीबन 300 स्टार्टअप्स अब खलाई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि तवक्को है कि इस शराकतदारी से कौमी इंसानी खलाई प्रोग्राम को फायदा पहुंचेगा और इंसानी सेहत की तहकीक दवासाजी और कचरे के मौसर बंदोबस्त और रिसाइकिलिंग के लिए हयातियात पर मबनी टेक्नोलॉजीज में इख्तराआत को फरोग हासिल होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल को है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने कल अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल इस फहरिस्त के मुताबिक बीजेपी ने नासिक सेंट्रल से दिव्यानी सहास फ्रांडे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मिलंद राम जी नरोटे को गढ़चिरौली से और चैन सुख मदन लाल कुजैती को मलकापुर असेंबली हलके से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी कल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और इसके साथ ही कांग्रेस की जानिब से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। एनसीपी एसपी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और पार्टी ने अब तक कुल 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जिसमें वो तीन नाम भी शामिल हैं जिनका ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल अपने 15 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की है। रियासत में अब तक 288 असेंबली हलकों के लिए 991 उम्मीदवार अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
وزیر اعظم نریندر مودی دیگر مرکزی وزراء اور بی جے پی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ آئندہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں حکمراں مہایوتی اتحاد کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے. بی جے پی نے انتخابی مہم میں حصہ لینے والی 40 سرکردہ شخصیات کی ایک فہرست جاری کی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. انتخابی کمیشن نے سیاسی پارٹیوں اور ان کے امیدواروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو. جھارکھنڈ کی ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر نیہا اروڑا نے کہا ہے کہ ایسے بیانات مثالی ضابطہ عمل کی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات میں ایف آئی آر درج کرائی کی جائے گی اور مناسب کاروائی کی جائے گی.
ہمارے ایم سی سی کا وائلیشن اگر کہیں ہوتا ہے اور وشیش روپ سے کچھ ایسے کامنٹ جو کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, ایسے میں الیکشن کمیشن کا بھی وسترت گائیڈ لائن ہے. راجنیتک دل اور امیدواروں کو کسی بھی طرح سے بیان سے پرہیز کرنا ہے جس سے مہیلاؤں کے سمان اور پرتشٹھا کے پرتیکول مانا جا سکتا ہے. کہ متداتاؤں کی جاتیگت سامپردائک بھاوناؤں کے آدھار پر کوئی اپیل نہیں کی جائے گی. متداتا کو گمراہ کرنے کے ادیشے سے کوئی بھی غلط بیان بازی نہیں کریں گے.
ان کا یہ بیان بی جے پی کی قبائلی خاتون امیدوار سیتا سورین کے خلاف جھارکھنڈ کے وزیر اور کانگریس رہنما عرفان انصاری کے نازیبہ کلمات کے بعد سامنے آیا ہے. اسپین کے صدر پیدرو سینچز آج سے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے. ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ بیگونا گومز بھی ہوں گی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا. 18 سال بعد اسپین کے صدر کا دورہ ہو رہا ہے. اس سے قبل وزیر اعظم مودی اور صدر سینچز کثیر رخی میٹنگوں کے موقع پر کئی بار ملاقات کر چکے ہیں. دورے کے دوران صدر سینچز وزیر اعظم مودی کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے. اس سال اگست کے مہینے میں ملازمین کی ریاستی بیمہ اسکیم ای ایس آئی کے تحت 20,74,000 سے زیادہ نئے ملازمین کا اندراج کیا گیا ہے. سال بہ سال کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملازمین کے مجموعی اندراج میں پچھلے سال کے اگست کے مقابلے میں 6.80% کا اضافہ ہوا ہے. ایسے ایف ایف خواتین چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں آج بھارت کی سینئر خواتین فٹ بال ٹیم کا مقابلہ نیپال سے ہوگا. یہ میچ آج کاٹھمانڈو کے دشرت اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. مانیکا بترا نے ٹیبل ٹینس میں فرانس میں جاری ڈبلیو ٹی ٹی چیمپئن شپ مونٹ پیلیئر 2024 مقابلے کے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی تھی. حالانکہ وہ کوارٹر فائنلز میں چین کی کھلاڑی کیان ٹیانی سے 3-0 سے ہار گئیں. کرکٹ میں آج احمد آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دن میں 1:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کے ابھیشیک نے البانیا کے تیرانا میں 23 سال سے کم عمر کے کشتی عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی خطے جنوب کے ممالک کو بھارت سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. روزنامہ پرتاپ نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس کے 23 امیدواروں پر مشتمل دوسری فہرست جاری ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبار کے مطابق کانگریس نے جالنا سے کیلاش گورنٹیال اور اورنگ آباد مشرق سے ایم کے دیشمکھ کو امیدواری دی ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی چیف الیکٹورل افسر کے اس بیان کو اپنی چھ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے سبھی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ قابل اعتراضات بیان دینے اور مثالی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے بچیں.
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج بھارت بنگلہ دیش سرحد سے متصل پیتراپول خشک بندرگاہ میں مسافروں کے لیے نئے تیار کردہ ٹرمینل عمارت اور مال برداری کے گیٹ میتری دوار کا افتتاح کریں گے. مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ 2035 تک بھارت کا اپنا خلائی اسٹیشن ہوگا جو بھارتی انترکش اسٹیشن کے نام سے جانا جائے گا. اس سال اگست کے مہینے میں ای ایس آئی اسکیم کے تحت 20,74,000 سے زیادہ نئے ملازمین کا اندراج کیا گیا ہے. اسپین کے صدر پیڈرو سینچز آج سے بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے. بھارت کے ابھیشیک نے البانیا کے تیرانا میں 23 سال سے کم عمر کے کشتی عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.